है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में और उसकी संगति में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि यूहन्ना दर्शन में देख रहा है कि प्रभु यीशु बादल पर बैठा आ रहा है और उसके हाथ में दंड का साधन है। वह उन सबको दंड देगा जिन्होंने उसके बहुमूल्य लहू को तुच्छ जाना है और पशु की पूजा की है। वह विद्रोह का दमन करेगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं प्रभु के अंतिम समय में आप हमारे साथ हमारे लोगों के बीच में किस प्रकार न्याय करेंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, पवित्र आत्मा सहायता करें ताकि हर एक आपके वचन को समझकर अपने जीवन में ग्रहण करें और हर एक प्रकार की बुराई से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के छल प्रपंच से बच सके। पिताजी, आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करें, हम सब की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसके 19 और 20 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14 उसके 19 और 20 पद में, तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है नगर के बाहर अर्थात यरूशलेम के बाहर। आगे कहता है घोड़ों की लगामों तक अर्थात लगभग 4 फुट तक, और तब कहता है 100 कोस अर्थात लगभग 278 किलोमीटर तक। यह दान से बरसभा तक की दूरी है। संपूर्ण फलिस्तीन युद्ध क्षेत्र है। युद्ध का अंत हर्मगिदोन में होगा। यह युद्ध अभियान महाक्लेश के आधे समय के बाद आरंभ होगा और प्रभु यीशु के पृथ्वी पर पुनः आगमन के समय समाप्त होगा। भजन संहिता 45 उसके 3-7 पद में भी इसकी भविष्यवाणी है। लिखा है, हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध, सत्यता और नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। मेरे मित्रों, यह भजन मसीह का भजन है। मैं इसका दुख नहीं मनाता हूं कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं दुख मनाने की अपेक्षा इसका प्रचार करूं। हमें सत्य का सामना करना आवश्यक है। पहली बात हम देखते हैं, पाप भयानक है, और दूसरा, संसार में पाप है, तीसरा, आप और मैं पापी हैं। पाप का एकमात्र उपचार है प्रभु यीशु द्वारा हमारे पापों के लिए बहाए गए लहू से उद्धार को ग्रहण करना, और चौथी बात है, आप और मैं परमेश्वर के दंड के भागी हैं। हमारा एकमात्र बचाव है कि हम कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के कामों को स्वीकार करें। बाइबल एक प्रश्न पूछती है जिसका उत्तर परमेश्वर भी नहीं दे सकता। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, किससे निश्चिंत रहें? दंड से निश्चिंत रहें? महाक्लेश के दंड का समय है मेरे मित्रों। बचने का मार्ग है और वह है प्रभु यीशु को ग्रहण करना। आप चाहें तो इसे बचने की युक्ति कह सकते हैं। यदि घर में आग लग जाए तो मैं खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाऊंगा या जो भी रास्ता दिखाई दे उससे बाहर भागूंगा। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण न करने वालों पर अंततः दंड आएगा। मनुष्य ने प्रभु यीशु का इनकार किया है, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा है और वाचा के लहू को अपवित्र जाना है। परमेश्वर न्यायनिष्ठ है, इस कारण वह दंड अवश्य देगा। आज की पीढ़ी को यह सुनना है। उन्हें यह सत्य सुनाने की अपेक्षा अनेक अन्य विधियां सिखाई जा रही हैं कि मसीही जीवन कैसे जिए। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को पवित्र जानने, प्रभु यीशु को धर्मी जानने और यह भी जानने कि वह आपके जीवन में पाप को स्वीकार नहीं करेगा। आप कोई भी क्यों ना हो, कोई भी विधि क्यों ना सीख ले, इससे बढ़कर के कुछ नहीं कि आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें। यही शिक्षा हमें अपने बच्चों को भी देनी है। मैं यह जानकर अति प्रसन्न होता हूं कि कुछ मनोवैज्ञानिक इस सत्य की ओर फिर रहे हैं। मेरे प्रियो, किसी ने अति उत्तम बात कही है, शिक्षा मंडल का उपयोग शिक्षा के आसन पर किया जाना चाहिए, अर्थात बच्चे की ताड़ना करना आवश्यक है। यदि बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आप उन्हें ताड़ना दे, इसलिए नहीं कि वे आप उसे ताड़ना दे करके कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि वह आपकी ओर लौटे, आपसे प्यार करे। इस अध्याय के अंत में मैं आपका ध्यान उस धारणा की ओर लाना चाहता हूं जिसके अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि कलीसिया महाक्लेश में यहां रहेगी। मेरे पास एक पत्रिका है जिसमें यह विचार प्रकट किया गया है। हमारी पृथ्वी पर एक सतही मसीही धर्म का बोलबाला है। वे जिनकी जड़ें मसीह में गहरी नहीं हैं, वे महाक्लेश में परमेश्वर के भक्तों की परीक्षा के विचार से या इस विचार से कि वह कष्टों द्वारा कलीसिया को मसीह की दुल्हन बनने योग्य बनाएगा, दूर भागते हैं। यह अति स्पष्ट है कि कष्ट महिमा का मार्ग है। हम इसके निमित्त बुलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि मसीह ने भी कष्ट उठाकर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है, हमें उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस कारण मैं विश्वासियों को यह शिक्षा नहीं देता हूं कि हम महाक्लेश में नहीं होंगे। हो सकता है कि महाक्लेश में ना हो, परंतु मसीह के नाम में कष्ट उठाने के लिए उन्हें तैयार करके उनके लिए अधिक लाभकारी शिक्षा देता हूं। अपेक्षा इसके कि उन्हें यह सिखाऊं कि वे परीक्षा की घड़ी से पूर्व उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसी लेख में यह व्यक्ति कहता है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के सब अस्त्र शस्त्र बांध ले, उसमें महान विकास होता है कि वह बुरे दिन का सामना कर पाए। जी हां, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुरा दिन महाक्लेश का समय नहीं है, वह परमेश्वर के क्रोध का महान दिन है। बाइबल में महाक्लेश को यही कहा गया है। मैं समझ नहीं पाता कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करने वाला यह कैसे कह सकता है कि महाक्लेश कलीसिया को शुद्ध करेगा या दुल्हन को तैयार करेगा। आपके विचार में प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर क्या किया? उसने हमें तैयार किया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के योग्य नहीं हैं। हम मसीह में उसकी उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। इसमें आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। आप परीक्षा की घड़ी को परमेश्वर के क्रोध का पृथ्वी पर आने वाला महान दिन नहीं कह सकते हैं। कलीसिया महाक्लेश से बचा ली जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ने यह स्पष्ट कर दिया है। 144,000 की पहचान की जा चुकी है कि वे इसराइली हैं। उनके गोत्रों की पहचान भी की गई है। अतः उन्हें कलीसिया कोई नहीं कह सकता है, न ही उस विशाल समूह को कलीसिया कह सकता है जिन्होंने अन्य जाति में से उद्धार प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, हमने यह तो देखा ही है कि परमेश्वर 144,000 को महाक्लेश में सुरक्षित रखेगा। निश्चय ही यदि उसकी योजना में हो तो वह कलीसिया को महाक्लेश में रहने देगा। प्रभु यीशु ने कहा था कि वह हमें पृथ्वी पर आने वाले उस घड़ी से बचा लेगा, अर्थात परीक्षा के उस भावी भयानक घड़ी से, परीक्षा की उस भयानक घड़ी से बचा लेगा। अतः यह प्रश्न तो उठता ही है कि कैसे बचाएगा, परंतु दूसरी ओर हम देखते हैं कि यह प्रश्न तो उठता ही नहीं है कि परमेश्वर कलीसिया को महाक्लेश से बचाएगा या नहीं। मैं दूसरे शब्दों में समझाता हूं, कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी, परंतु हम कुछ क्लेश में होंगे। हम सब समस्याओं से घिरे हैं और कष्टों में हैं। मैं भी एक ऐसा ही मनुष्य हूं जो आप हैं। मैंने एक भी ऐसा मनुष्य नहीं देखा है जो समस्याओं से नहीं घिरा है या कष्टों में नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर का भक्त जितना अधिक आत्मिक होगा उतना ही अधिक उस पर कष्ट आएगा। परमेश्वर अपनी संतान को इसी प्रकार बचाता है। हम परमेश्वर के महान संत नहीं बन सकते हैं, हम उसके छोटे बालक हैं जो अपरिपक्व और अविकसित हैं। जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे तब हम हमारे निमित्त किए गए मसीह के काम के कारण ग्रहण योग्य ठहरेंगे, महाक्लेश से बच आने के कारण नहीं। एक और बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिकांश कलीसिया महाक्लेश से बच गई है। 2000 वर्षों से अधिक समय से विश्वासी मरकर मसीह की संगति में पहुंच चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यह सोचते हो कि परमेश्वर उन्हें फिर से पृथ्वी पर भेजेगा कि वे महाक्लेश में उपस्थित हों? महाक्लेश के आरंभ होने पर जो विश्वासी इस पृथ्वी पर होंगे वे संपूर्ण कलीसिया की तुलना में बहुत कम होंगे। अधिकांश कलीसिया तो पहले ही महाक्लेश से बच गई है। मेरे प्रियो, मुझे हमेशा ऐसा ही प्रतीत हुआ है कि महाक्लेश में कलीसिया की उपस्थिति के समर्थक यह सोचते हैं कि कलीसिया को दंड की आवश्यकता है, विशेष करके मुझे दंड की आवश्यकता है, मुझे नरक जाने की आवश्यकता है, परंतु मैं नरक में नहीं जाऊंगा क्योंकि मसीह ने मेरा दंड उठा लिया है और मैं उसमें विश्वास करता हूं। मैं महाक्लेश में भी नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मसीह मेरे लिए मरा और वह मुझे अपने अनुग्रह से बचा लेता है। क्या वह जो कहता है कि वह अनुग्रह का धनी है मुझे महाक्लेश से बचा नहीं सकता है? यह सच है कि परमेश्वर हमें इस जीवन के क्लेशों में पड़ने देता है। मेरे जीवन में भी कुछ बीमारियां हैं और कई बार हम अस्पताल भी जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें उस महाक्लेश से उबारता है। परमेश्वर इस विधि से हमें शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है। हाल ही की बात है कि मेरे एक प्रचारक मित्र ने मुझसे कहा कि आपके रोगी होने के बाद मैं आप में बहुत अंतर देखता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह सही कहता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर किसी उद्देश्य के निमित्त ऐसा करता है। मेरे प्रियो, जब मैंने उस भाई के विचार को पढ़े, कलीसिया का महाक्लेश में होना आवश्यक है, तो मैं सोचने लगा कि क्या उसने मसीह के नाम में कभी कष्ट उठाया है। मैं अपने एक मित्र के साथ भोजन कर रहा था, वह इसी विचार का समर्थक है। उसके अनुसार महाक्लेश कलीसिया द्वारा तेज गर्मी में नदी के पानी से चलकर जाने या बिजली की कटौती का कष्ट उठाने से अधिक नहीं है। वह उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यक्त भयानक समय नहीं समझ रहा है। क्या परमेश्वर हमें तथ्यों का गलत ज्ञान प्रदान कर रहा है? क्या वह हमें डराना चाहता है? जी नहीं। मेरे मित्रों, इस पुस्तक में परमेश्वर प्रतीकों का प्रयोग करता है। आप जानते हैं कि वह प्रतीकों का प्रयोग क्यों करता है? वह तथ्यों को छिपाने के लिए नहीं कि हम उन्हें मन से निकाल दें, परंतु इसलिए कि सच्चाई प्रतीकों से कहीं अधिक भयानक है। यूहन्ना द्वारा व्यक्त अनेक बातों को व्याख्या की आवश्यकता है। परमेश्वर भी उनमें से कुछ बातें हमें समझा नहीं सकता है, इसलिए नहीं कि वह इस योग्य नहीं है, परंतु इसलिए कि हम ऊंचा सुनते हैं, जैसा वह पहले भी हमसे कह चुका है, हम हर बात समझ नहीं पाते हैं। मुझे दुख है कि अधिकांश जन समझ नहीं पा रहे हैं कि महाक्लेश एक भयानक समय होगा और उन 144,000 लोगों का बच जाना या बच निकलना एक चमत्कार ही होगा। वह उनमें से एक को भी नहीं खोएगा। क्यों? क्योंकि वे बलवंत एवं हृष्टपुष्ट जन हैं। जी नहीं, वे मेमने के लहू से जयवंत होंगे। यही उनके बचाव का मार्ग है। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 14 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 15 में आते हैं, जिसका विषय है महाक्लेश के अंतिम दंड की तैयारी। इस अध्याय में एक और स्वर्गिक चिन्ह है। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियों के साथ खड़े हैं। अध्याय 15 और 16 जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास हम परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे देखते हैं। मेरे विचार में आप सोच रहे होंगे कि सबसे बुरा समय निकल चुका है, परंतु प्रकोप के ये 7 कटोरे सबसे भयानक हैं। हमने 7 मुहरें, 7 तुरहियां और 7 नायक देखे। अब ये आने वाले प्रकोप के 7 कटोरे सबसे अधिक कष्टकारी हैं। अध्याय 15 प्रकाशित वाक्य का सबसे छोटा अध्याय है, परंतु वह महाक्लेश में पृथ्वी पर आने वाले दंड की अंतिम श्रृंखला का अमुक है। ये दंड अब तक के दंड में सबसे कठोर और विनाशक हैं। मेरे प्रियो, महाक्लेश का उद्देश्य है दंड देना, न कि कलीसिया को शुद्ध करना। यह शैतान को दिया गया अंतिम अवसर है। परमेश्वर इस क्लेश से पूर्व कलीसिया को उठा लेगा, क्योंकि अनुग्रह अनंत है और अति महान है। यदि आप उसके अनुग्रह को ग्रहण करेंगे तो महाक्लेश से बच जाएंगे। मेरा विश्वास करें कि प्रकोप के कटोरे धन्य आशा नहीं है जिसकी विश्वासियों को आशा है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 13 पद में लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। यदि हम उसके साथ प्रेम में उन्नति करें तो हमारे लिए महाक्लेश का दंड भयानक नहीं होगा। आप मानेंगे, क्योंकि आप शुतुरमुर्ग के समान रेत में मुंह छिपाकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने से इनकार नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो आप महाक्लेश में नहीं होंगे, परंतु आपको यह जानना आवश्यक है कि उद्धार से रहित मनुष्यों के साथ क्या होगा। इस प्रकार आप इन कठिन दिनों में प्रभु यीशु के उत्साही गवाह बनेंगे। डीएल मूडी के लिए किसी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतने मनुष्यों के चेहरे देखे जितने किसी ने कभी नहीं देखे होंगे, और उन्होंने नरक की जनसंख्या में 20 लाख की कमी कर दी। हम पृथ्वी पर जनसंख्या विस्फोट के बारे में देखते हैं कि रोकने के लिए बहुत सारे विषयों की चर्चा की जाती है, परंतु नरक में जनसंख्या विस्फोट तो वर्षों से हो रहा है। मैं वहां की जनसंख्या वृद्धि में कटौती करने में सहायता करना चाहता हूं कि लोग नरक में कम जाएं। मेरे मित्रों, इससे पूर्व कि ये स्वर्गदूत प्रकोप के कटोरे उलटना आरंभ करें, आपके मन में एक प्रश्न उभर रहा होगा, क्या कुछ विश्वास ख्रिस्त विरोधी के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे या खड़े होने पाएंगे? यदि इसका उत्तर आपको नहीं मिला है तो वह है कि कुछ भक्त होंगे जो इस योग्य बनाए जाएंगे कि उसके विरुद्ध खड़े हों। मेरे श्रोता मित्रों, सचमुच में हमारे जीवन के लिए ये दिन बहुत भयानक होंगे। तो इससे पूर्व कि हम उस महाक्लेश में प्रवेश करें, हम अपने जीवन को क्यों ना प्रभु की ओर लौटा ले आएं, ताकि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए जाएं। मेरे श्रोता मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही अद्भुत बातों को सीखा है जो हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
आंखें अपनी पर्वत की ओर।